ओम शांति। ईश्वर से बेमुख होने का कारण ये पांच विकार ही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अशुद्ध अभिमान। इन विकारों ने इंसान को दुख और अशांति का तो अनुभव कराया ही है, लेकिन परमात्मा से भी बेमुख कर दिया है, और फलस्वरूप सुख और शांति के दाता परमात्मा को सभी भूल गए हैं। वास्तव में आत्मा की स्थिति उस परमात्मा की भी याद दिलाती है, तो साथ साथ विकारों को जीतने की भी शक्ति देती है। आज हम मोह और अभिमान की चर्चा करेंगे। मोह को एक मकड़ी की जाल की तरह कहा गया है। जिस प्रकार एक मकड़ी अपने मुख से ही जाला बुनती है और उसी में खुद ही फंस जाती है, इसी प्रकार आज का इंसान अपनी ही जाल बुनकर फिर उसमें ही फंस जाता है और फिर दुखी हो जाता है। अपनी रचना रचता है, फिर उससे मोह हो जाता है और मोह की जाल बढ़ाता जाता बढ़ाता जाता। आज जन्म है तो खुशी है, कल मृत्यु है तो दुख है, और फलस्वरूप इंसान समझता है कि यही सुख दुख ही तो जीवन है। लेकिन भगवान ने हमें दुखी करने लिए इस संसार में नहीं भेजा, भगवान ने तो हमें सुखी अनुभव करने लिए इस संसार में भेजा। लेकिन हमें यह भी आदेश दिया कि इस संसार की वस्तुओं का उपभोग अवश्य करो, परंतु इनका लोभ मत रखो। व्यक्तियों से संबंध अवश्य रखो, लेकिन उनमें मोह नहीं रखो, क्योंकि मोह अंत में दुख ही देगा। आज जिस विनाशी वस्तु में मैं मोह रखती हूं, कल जब वही विनाशी वस्तु मुझसे दूर हो जाएगी तो मुझे उसका दुख अवश्य होगा, क्योंकि इस संसार की हर वस्तु क्षणभंगुर है, अल्पकाल की है और अल्पकाल का ही सुख देने वाली है। आज कोई चीज हमें सुख देगी तो कल वही चीज हमें दुख भी दे सकती है, परंतु हमने अगर उसमें मोह रख लिया तो जब वह दुख देगी तो अवश्य हमारे मोह को ठेस पहुंचेगी। आज किस व्यक्ति से हम मोह रखते हैं क्योंकि वह हमें सुख देता, और कल वह व्यक्ति अगर मर जाता है तो हमें वही मोह दुख देगा। तो क्यों नहीं हम समझदार बने और मोह की जाल को बढ़ाई नहीं। रचना ये अच्छी बात है, गृहस्थ चलाना ये अच्छी बात है, कर्म करना ये अच्छी बात है, जिम्मेदारियां निभाना ये तो आवश्यक है, लेकिन भगवान हमें कहते हैं कि ये सब कुछ करते हुए भी उसमें फंसो मत। जिस प्रकार एक कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता, कीचड़ में ही वो बढ़ता है, लेकिन कमल के फूल की यह विशेषता है कि कीचड़ का असर प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। इसी प्रकार परमात्मा भी हमें सिखाते हैं कि इस संसार में रहो, हर कर्म करो, लेकिन कर्म से लिप्त मत हो जाओ, सच्चे कर्म योगी बनो, कर्म हाथों से करो, और मन से ईश्वर को याद करो। हाथों से कर्म करना ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मन को हमें ईश्वर को देना है, यही सच्चा कर्म योग है। अपने आप को केवल निमित्त समझो, ईश्वर के हाथों से कार्य करने वाला मैं निमित्त, ईश्वर कराने वाला हाथ करने वाले, वह करम करावन हार परमात्मा है और मैं एक निमित्त आत्मा हूं। तो अगर मैं इस भाव को बुद्धि में रखूंगी तो कर्म करते समय न अभिमान आएगा, न किसी व्यक्ति से मोह होगा, क्योंकि वो व्यक्ति भी ईश्वर का, कर्म भी ईश्वर का, मैं तो केवल निमित्त हूं। और फिर कर लेने के पश्चात उस कर्म को हम ईश्वर को ही अर्पित करते हैं, परमात्मा ये कार्य तेरा है, तो ये कार्य की सफलता भी तेरी सफलता है। अगर सफलता मिलती है तो भी कोई अति अभिमान नहीं, और अगर नहीं मिलती है तो भी कोई दुख नहीं, क्योंकि ये तो ईश्वर का कार्य था, मैंने क्या किया। तो इसी प्रकार हम इस संसार में रहते हुए भी कमल फूल समान जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम रखना, प्यार देना, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आज प्रेम विकृत रूप ले चुका है, प्रेम काम वासना का रूप ले चुका है या तो मोह का रूप ले चुका है, क्योंकि शरीर से प्रेम हो गया है, और जहां शरीर से प्रेम केवल होगा तो अवश्य अंत में वो काम और मोह का रूप धारण कर हमें दुख ही देगा, क्योंकि जिससे प्रेम है वह चीज विनाशी है। तो हम क्यों नहीं देह से प्रेम रखने के बजाय आत्मा से प्रेम रखें, आत्मा के गुणों से प्रेम रखें, आत्मा की विशेषताओं से प्रेम रखें, आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, जो सत्य है, उसकी सत्यता से प्रेम रखें, बजाय केवल शरीर से प्रेम रखने से। और जहां मोह का विकार दुखदाई है, उनसे भी भयंकर दुखदाई है अभिमान का विकार। अभिमानी व्यक्ति तो उस लंबे खजूर के पेड़ की तरह है, जिसके पास खजूर जैसे गुण तो हैं, विशेषताएं हैं, लेकिन वो किसी काम का नहीं समाज में। जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, न किसी को अपना फल दे पाता है और न ही किसी को अपनी छाया दे सकता है, इसी प्रकार अभिमानी व्यक्ति उस खजूर के पेड़ की तरह है, न किसी को अपनी विशेषताओं का सुख दे सकता है और न ही उसके सानिध्य में आकर के कोई विशेष अनुभूति भी होती है, परंतु मनुष्य अभिमानी व्यक्ति के साथ अंत में दुख ही प्राप्त करता है। तो अभिमान वास्तव में सभी विकारों की जड़ है, जिसको हम कहते हैं यह देह का अभिमान। जहां पर मैंपन आया इस शरीर का, वहां अंत में हमारी हार अवश्य होगी। तो क्यों नहीं हम एक खजूर के पेड़ की बजाय आम के पेड़ की तरह बने। जैसे आम का पेड़, जितने पेड़ में आम लदे होंगे उतना ही वह पेड़ झुकता है, छाया भी देता है। तो अभिमानी व्यक्ति के बजाय हम गुणवान व्यक्ति की तरह बने, अपने जीवन में अंतर्मुखता, धैर्यता, सहनशीलता, निर्भयता, सरलता, दिव्यता, ये सारे गुण हम धारण करें। और हम विश्वास से कह सकते हैं कि अगर हम विकारों को जीतेंगे, अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा करेंगे, तो हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं होगा लेकिन समाज के लिए हितकारी होगा। आज हम अपने लिए तो जी रहे हैं लेकिन समाज के लिए कितना जी रहे हैं? अपने आप से पूछें, अपने शरीर की खुशियों के लिए, शरीर के संतोष के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के संतोष के लिए हम कितना कर रहे हैं? और वह न करने के कारण, मैंपन आने के कारण ये संसार आज घोर कलयुग बन गया है और हम देख रहे हैं परिणाम। समस्याएं बढ़ती जा रही है, एक समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो 10 समस्याएं और बन जाती है। मैं वो एक समस्या ही हम हल कर पाते हैं और उसकी जगह 10 और खड़ी हो जाती है तो सोचिए इंसान की क्या हालत होगी। तो क्या करना चाहिए हमें? क्या हम विनाश की ओर जाना चाहते हैं? क्या हम इस संसार को बारूद के ढेर पर खड़ा करना चाहते हैं? क्या हम अपनी ही इस सुंदर धरती को राख बनाना चाहते हैं? आखिर हम क्या चाहते हैं इस संसार से? क्या हम अपने स्वार्थ के खातिर अनेकों को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या उससे हमारा स्वार्थ सचमुच सिद्ध होगा? कभी नहीं। तो क्यों नहीं आज हम सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं? अभी भी समय है, अभी भी एकदम समय गुजर चुका है हम ये नहीं कहेंगे। तो आज हम ये प्रतिज्ञा कर लें, अपने आप को समझाएं कि मुझे बदलना है। हम दूसरे को न देखें, हम ये नहीं सोचे कि ये बदले तो मैं बदलूं। बस यही गलत धारणा है हमारी, ये भी भिखारी बना हुआ। हम ये क्यों सोचते हैं कि ये बदले तो मैं बदलूं? वास्तव में मुझे बदलना है। कई व्यक्ति कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है। ठीक बात है, क्रोध करने वाले व्यक्ति पर या झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर मुझे क्रोध आ सकता है, परंतु जिस व्यक्ति ने झूठ बोला अवश्य उसने पाप किया, पर मैंने भी अगर क्रोध किया तो मैंने भी तो पाप किया। किसके झूठ पर मुझे क्रोध आता है? तो ये तो ऐसे हुआ जैसे उसने पाप किया, मैंने भी पाप किया, तो दोनों तो पापी हो ही गए। तो अगर वो झूठ बोलता है, क्या हमने उसका कारण जाना है क्यों वो झूठ बोलता है? क्या पता मेरे क्रोध के कारण वो झूठ बोलता हो, मेरे डर के कारण वो झूठ बोलता हो? तो अगर मैं उनसे सच बुलवाना चाहती हूं तो मुझे अपने व्यवहार को बदलना होगा। मेरे क्रोध करने से वो सच बोलेगा ये आवश्यक नहीं है। हाँ, अगर मैं प्रेम से व्यवहार करूंगी, उसके दिल जीतूंगी, तो अवश्य वो सच्चे दिल से सच्चाई का वर्णन कर भी लेगा। लेकिन हम जबरदस्ती किसे सच बुलवाएं, ये कोई संभव है? मैं तो नहीं समझती। आज हमने देखे हैं कितने ही लोग मारते हैं, पीटते हैं, क्या क्या प्रहार करते हैं सच बुलवाने के लिए, और वो व्यक्ति मर जाएगा लेकिन सच नहीं बोलेगा, क्योंकि हिंसा से हिंसा बढ़ती है। गरम लोहे को ठंडे लोहे से ही काटा जाता है। कभी भी नहीं देखा कि गरम लोहे को गरम लोहे से काटा जाए। अग्नि को शांत करने के लिए ठंडे जल की आवश्यकता है। इसी प्रकार पाप को खत्म करने के लिए पुण्य की आवश्यकता है। उसके लिए हम यही राय देंगे कि हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो, अंतर में सर्व आत्माओं के प्रति प्रेम की वृत्ति रखो, प्रेम की दृष्टि रखो, तो जहां प्रेम की दृष्टि और वृत्ति आएंगी वहां अवश्य आपके हृदय में प्रेम जागृत होगा और आप प्रेम से अनेक आत्माओं की दिल जीत सकोगे। जब सबकी दिलों को जीतेंगे तब ही आप सारे विश्व को जीत सकते हो। आज हम ये सोचें कि मैं क्रोध करके, ईर्ष्या करके, द्वेष करके, हिंसा करके मैं व्यक्ति को, स्थान को जीतूं और उसको अपना बनाऊं, लेकिन ये तरीका गलत है और ये तरीका आज संसार में अपनाया जा रहा है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भी हिंसा का प्रयोग किया जाता है और हम देख रहे हैं आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कहां होगा इस आतंकवाद का अंत? कैसे होगा? क्या हिंसा बढ़ाने से होगा? नहीं, इसका अंत होगा ही प्रेम से व्यवहार करने से। लेकिन प्रेम भी किसके साथ? शरीर के साथ प्रेम नहीं, आत्मा के साथ प्रेम, और साथ साथ धीरज का गुण, ये बहुत आवश्यक है। कहा जाता धीरज का फल मीठा। आज हम धीरज खो चुके हैं क्योंकि आत्मा अपनी शक्ति को गंवा बैठी है। धीरज भी एक बहुत बड़ा गुण है। आज धीरज क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रियों की उत्तेजना है। आज इंद्रियों में शीतलता नहीं है और फलस्वरूप धीरज की कमी संसार में बढ़ती जा रही है। इंद्रियों का आकर्षण मन के सच्चे रस को समाप्त कर रहा है, चाहे नेत्र का आकर्षण जिसको नेत्र रस कहा जाए, चाहे स्पर्श रस, गंध रस, जीभ रस, ये सारी इंद्रियों के रस मन को अपनी ओर खींचते जा रहे हैं और फलस्वरूप मन इंद्रियों का गुलाम बन गया है। होना चाहिए विपरीत, इंद्रियों मन की गुलाम होनी चाहिए। जहां मन डायरेक्शन दे, निर्देशन दे, वहां इंद्रियों को चलना चाहिए या कार्य करना चाहिए। और आज परिस्थिति प्रतिकूल है, जहां इंद्रियों खींच के ले जाती है वहीं मन चला जाता है और परिणाम हमारे सामने है। पाप कर्म की ये दुनिया बन चुकी है, घोर कलयुग बन चुका है। मिसाल के तौर पर आज अगर ड्राइवर नियंत्रण करने के बजाय गाड़ी या वाहन ड्राइवर को नियंत्रण कर ले तो आप सोचिए परिणाम क्या होगा। एक्सीडेंट, केओस, कंफ्यूजन। तो आज दुनिया में इतना जो केओस है, इतनी जो कंफ्यूजन है, इसका मूल कारण है इंद्रियां मन को अपने वश कर चुकी है। अब कैसे मन फिर से इंद्रियों को वश करे, उसके लिए चाहिए बुद्धि रूपी लगाम, जो इस मन को, जो घोड़े समान है, उसको दिशा दे। और वो दिशा हम आत्मचिंतन से कर सकते हैं। अपनी आत्मा को पहचाने, उस ईश्वर को पहचान करके शांति के गुण को अपनाएं, धीरज को अपनाएं, इंद्रियों को शीतल करते जाएं, मन को शुद्ध संकल्प देते जाएं, तो अवश्य मन भी शांत होगा, इंद्रियां भी शांत होंगी और ये संसार शांति में बन जाएगा। हम संसार में शांति की कामना तो करते हैं, लेकिन पहले है अंतर की शांति। जब तक हरेक ने अपने आप को शांति का अनुभव नहीं कराया है, तब तक विश्व में शांति कभी नहीं हो सकेगी। हम विश्व में शांति की बात तो करते हैं, लेकिन पहले चाहिए मन की शांति। बिना मन की शांति के विश्व की शांति कैसे संभव होगी? हाँ, कई बार हम कई प्रकार के लोगों से पूछते हैं, आप हमें शांति की परिभाषा बताइए। एक राजनीतिक कहेगा शांति माना हिंसा नहीं, युद्ध नहीं, नो वॉर इज पीस। राजनीतिज्ञ के अनुसार युद्ध नहीं वही शांति है, लेकिन यह कोई आध्यात्मिक शांति नहीं, यह श्रेष्ठ शांति नहीं, क्योंकि हो सकता है युद्ध न भी हो परंतु फिर भी अशांति ये तो भीतर की चीज है, युद्ध बाहर की चीज है। वातावरण की शांति होगी लेकिन मन की शांति नहीं होगी तो भी दुनिया में शांति नहीं कही जाएगी। इसलिए युद्ध का न होना ही शांति नहीं है, शांति की तो बहुत बड़ी परिभाषा है। इसी प्रकार आज किसी मनोवैज्ञानिक से पूछा जाए कि आप शांति की परिभाषा दीजिए, तो वो यही कहेगा कि जहां प्रेम है, एकता है, सद्भावना है, सद्विचार है, आपस में भाईचारा है, ये शांति है। अर्थात पहले ये सब गुण हो फिर उसके बाद शांति आएगी, लेकिन हम उस प्रकार की ही शांति नहीं चाहते, क्योंकि ये सारे गुण भी कब आएंगे, कैसे आएंगे। शांति तो सबसे पहले चाहिए, क्योंकि जब मन में शांति होगी तो प्रेम भी होगा, सुख भी होगा, एकता भी होगी, भाईचारा भी होगा, हम एक दूसरे मिल करके कार्य भी करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले मन में शांति चाहिए। जब तक मन में शांति नहीं आई तब तक व्यवहार भी हमारा श्रेष्ठ कभी नहीं होगा। तो मन की शांति के लिए विचारों का परिवर्तन करना अति आवश्यक है। जब तक हमने अपने मन के विचारों का परिवर्तन नहीं किया हम कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकेंगे, असंभव है। तो इसलिए शांति शांति चिल्लाने की बजाय स्वयं को शांत बना दीजिए। ये महसूस कीजिए कि मैं हूं शांत स्वरूप, शांति तो मेरा स्वरूप है, और एक घड़ी भी नहीं लगेगी आपको शांति का अनुभव करने के लिए। मन में क्रोध आता हो, कोई आपको कुछ बुरा कह रहा हो, उसी समय शांति का अनुभव कर लो, बड़ा सहज है, मुश्किल नहीं है। अंतर में ये सोचो अरे मैं कौन, उस स्वमान में आ जाओ। अभिमान में क्यों आते हो, अभिमान तो गिरती कला में ले जाएगा। पर चिंतन हमारे लिए पतन का ही कारण बन जाएगा, लेकिन आत्मचिंतन करिए तो आत्मा की उन्नति से इस सारे संसार को हम उन्नत बना सकेंगे। तो हम अपने आप से पूछें हम क्या चाहते हैं, फिर से पूछिए अपने आप से क्या चाहते हैं। क्या केवल धन कमाना ही चाहते हैं, केवल यश कमाना ही चाहते हैं, केवल मान इज्जत यही हम चाहते हैं, केवल पोजीशन ही चाहते हैं संसार में, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये सब होते हुए हम अपने आप से पूछें हम संतुष्ट हैं, तो अंतरात्मा से आवाज निकलेगी नहीं। तो क्यों नहीं है संतुष्ट, सब भौतिक साधन होते हुए भी हमको संतोष क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है। इसका कारण है कि वो चीज तो है ही भीतर की, ये बाहर की चीज है ही नहीं। तो इस भीतर की अनुभूति के लिए हमें अपने संकल्पों को बदलना ही पड़ेगा। जब तक हमने अपने संकल्पों को नहीं बदला है तब तक हम दूसरों के संकल्पों को भी कभी नहीं बदली कर सकेंगे। बस यही हम अपने आप को समझाएं। कई बार हम चाहते कुछ और हैं, होता कुछ और है, क्योंकि सदा यही नहीं कि जो हम सोचते हैं वो दूसरे भी सोचे। और क्या धन कमाना यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हम तो नहीं समझते। धन कमाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन चरित्र कमाना ये बहुत बड़ी बात है। कहा जाता धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। लेकिन आज की कलयुगी दुनिया में इसके विपरीत कार्य चल रहा है। लोग समझते हैं कि अगर चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन धन गया तो सब कुछ चला गया। पहले वो जमाना था जब इंसान कहते थे, देखो मैं समाज में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मुझ पर कई जिम्मेदारियां हैं, तो समाज में मुझे सम्मान चाहिए, इसलिए मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, मैं अपने चरित्र को खत्म नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समाज में रहने वाला सम्माननीय व्यक्ति हूँ। लेकिन आज की दुनिया में उलट है विचार। लोग सोचते हैं कि क्योंकि मैं समाज में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे सम्मान चाहिए, इसलिए मुझे धन की आवश्यकता है, और अगर मैं धन न कमाऊं तो मैं समाज में सम्मान से कैसे रह सकता हूँ, और धन सहज तो आता नहीं, इसलिए भ्रष्टाचार करना पड़ता है। लेकिन जैसे बतलाया, चरित्र गया तो सब कुछ गया, एक जन्म तो क्या अनेक जन्मों के लिए गया, क्योंकि आत्मा वही संस्कार इस जन्म से ले जाती है, और जहां वो जन्म लेगी वहां उसे वही चरित्र मिलेगा जो उसके संस्कार में है। तो देखिए, इसलिए कहा गया है चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो क्यों नहीं हम अपने चरित्र को सुधारें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, श्रेष्ठ कर्म करें, विकारों को जीते और इस संसार को सुखमय बनाए, खुद भी सुखी रहे और सबको सुखी रखें। ओम शांति।